है अनकबूत। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। ये हमारी कायनात के छोटे छोटे उस्ताद, जैसे पीछे हमने चींटी का जिक्र पढ़ा, हमने शहद की मक्खी का जिक्र पढ़ा, मवेशियों का जिक्र पढ़ा, हमने मक्खी का जिक्र पढ़ा, तो ये अनकबूत भी मेरी और आपकी उस्ताद। और मकड़ी जाला बनाती है जिसको वेब कहते हैं, आप इसे मजीद वेबसाइट कह लीजिए। अकल वाले उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बेअकल उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। और मकड़ी जो जाला बनाती है, उंगली की पोर से टूटने वाला जाला होता है। और आज दुनिया का सारा बातिल निजाम भी यूं समझ लीजिए कि मोमिन की एक टच का मुंतजर है और उससे टूटने वाला है। और जिस तरह मकड़ी का घर नहायत बोदा, कमजोर और नापायदार होता है, इसी तरह गैरुल्ला के सहारे भी नापायदार हैं। और गैरुल्ला का सहारा लेना भी ऐसी ही बेवकूफी है जैसे कोई मकड़ी के घर का सहारा ले। गैरुल्ला को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना बिल्कुल बेकार है और वो किसी काम नहीं आ सकते। सूरह अनकबूत का बुनियादी मजमून आजमाइश है। हिजरत हबशा से पहले ये सूरत नाजिल हुई और वो दौर इतना सख्त था, मुसलमानों पर कुफार शदीद जुल्म सितम ढा रहे थे और उन्हें जिस्मानी अजियतें दे रहे थे। वो इस कदर आजमाए गए किस बिना पर, सिर्फ इस बिना पर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। वल्लाह आज हम 1000 दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, उनका 1 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और जुल्म सितम बर्दाश्त करना, हम उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पा सकते। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया पर, फिर सालिहीन पर, फिर दर्जा बदर्जा लोगों पर। जिस पर आजमाइश जितनी ज्यादा आती है वो अल्लाह का उतना ही ज्यादा मुकर्रब होता है। और इसी हदीस के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और आदमी की आजमाइश जारी रहती है हत्ता कि वो जमीन पर इस हाल में चलता फिरता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। अल्लाह हमारे हर गम, हर दुख और हर बीमारी को परवरदिगार गुनाहों के झड़ने का जरिया बना दे। और अल्लाह तो हमें आफियत में रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। युफ्तनून, फतन्ना का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है जो सोने को आग में तपाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। गोया अल्लाह के रस्ते में आजमाए जाने वालों को अल्लाह ताला ने सोने से तशबीह दी है। और यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जन्नत सिर्फ दावों से नहीं मिलती, अमल से मिलती है और अल्लाह की रहमत से मिलती है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हों पर ऐसे जुल्म ढाए गए। हजरत बिलाल फरमाते थे कि मेरे रब ने मुझे ठोक बजा कर देखा है, जिस तरह हम बर्तन खरीदने से पहले उसको ठोक बजा कर देखते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हों के बारे में आता है कि उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को चिलचिलाती धूप में बाहर ले आता और मक्का के संग्रेजों पर पुश्त के बल लिटा देता और एक बड़ी चट्टान लाने का हुक्म देता जिसे हजरत बिलाल के सीने पर रख देता। फिर कहता, वल्लाह तुम इसी तरह पड़े रहोगे हत्ता के मर जाओ, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो और लात और उज्जा की इबादत करो। हजरत बिलाल इस तकलीफ में भी यही कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत शाबी ने कहा कि हजरत उमर ने हजरत खबाब से मुशरिकीन की तरफ से दी जाने वाली तकलीफों के बारे में पूछा तो हजरत खबाब ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी पुष्ट मुलाहिजा फरमा लें। हजरत उमर ने देख कर फरमाया, मैंने आज तक ऐसी हालत किसी की नहीं देखी। हजरत खबाब फरमाते हैं, मुशरिक मुझे सजा देने के लिए आग जलाते फिर उस पर लिटा देते। इस आग को मेरे पुष्ट की चर्बी के अलावा कोई चीज बुझाने वाली नहीं थी। कैसा कैसा सताया! हमारे असलाफ ने इस दीन को कितनी भारी कीमतें देकर हासिल किया। और पानी बहता है तो रस्ते में पत्थर तो आते ही हैं। हमारा काम क्या है? पत्थरों से टकराते हुए, जगह बनाते हुए गुजर जाना। और फारसी का शेर है, चे में गोइम लर्जम के दाना मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं खुद को मुसलमान कहते हुए लरजता हूँ कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात को जानता हूँ। वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। हजरत हमजा ने अपने 11 टुकड़े करवा लिए इस दीन की खातिर। हम देखते हैं कभी कभी इम्तिहान में ऐसी जगह से सवाल आ जाता है कि सोचा भी नहीं होता, और दर्जे तो इम्तिहानों के बाद ही मिलते हैं। और अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में कहा, सुनो अल्लाह का माल भारी कीमत में मिलेगा, सुनो अल्लाह का माल जन्नत है। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? वो बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकरर किया हुआ वक्त आने ही वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र किया और अल्लाह ने कहा कि जो मिलने की तवक्को उम्मीद रखते हैं, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को महबूब रखता है अल्लाह उसकी मुलाकात को महबूब रखता है, और जो अल्लाह की मुलाकात नापसंद करता है अल्लाह उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। इस पर हजरत आयशा या आपकी किसी और बीवी ने कहा, हम तो मौत को नापसंद करते हैं। आपने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो उसे अल्लाह ताला के राजी होने की और इसके बाइज्जत होने की खुशखबरी दी जाती है, तो उसे इससे ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं होती जो उसके आगे आने वाली है। और जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो उसे अल्लाह के अजाब और उसकी सजा की खुशखबरी दी जाती है, तो उससे ज्यादा नापसंदीदा चीज कोई नहीं होती जो उसके आगे है। तो वो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मैं तुझसे तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का और तेरी मुलाकात के शौक का सवाल करता हूँ। किसी तकलीफ के बगैर जो नुकसान पहुंचाने वाली है और किसी फितने के बगैर जो गुमराह करने वाला है। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह, जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। इसको यूं समझ लीजिए कि जितना अंगूर डालोगे उतना मीठा होगा। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। किसान बीज को मुट्ठी में बंद करके रखे कभी बराबर नहीं होगा, मिट्टी में दबाना पड़ेगा। और हजरत हसन बसरी कहते हैं, आदमी जिहाद करता है ख्वा कभी एक दफा भी वो तलवार ना चलाए, यानी ये मुजाहिदा एक दिन दो दिन का नहीं, उम्र भर का, दिन के 24 घंटों का, हर लम्हे का है, और किसी एक मैदान में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में, हर महाज पर अल्लाह के दीन की खातिर मेहनत करना। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह, फायदा उसी को हासिल होगा जो मेहनत करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे। कितना प्यारा है मेरा और आपका रब। मिले जुले अमाल हैं, कोई कम दर्जे के, कोई अच्छे दर्जे के। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं बेहतरीन अमाल के मुताबिक उनको जजा दूंगा। और बुराइयां कैसे दूर होती हैं? नेकियों की वजह से। वजू, नमाज, रोजा, सदका, नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से मना करना, ये हमारे गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। उमरा, हज, रमजान के रोजे, ये गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। और जहाँ नेकियां रवाज पा जाए वहां से तो बुराइयां खुद बखुद खत्म होने लगती हैं। तो अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमा रहे हैं कि उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे उनके नेक अमाल की वजह से। और हमने इंसान को हदायत की है कि अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें तो मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी इताअत ना कर। मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनना और मानना आदमी पर फर्ज है, उन हुक्मों में से जो उसे पसंद हो या ना पसंद हो। जब तक उसे अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दिया जाए, तो जब अल्लाह की नाफरमानी का उसे हुक्म दिया जाए तो ना सुनना जायज है और ना मानना। ख्वाबो वालदेन ही क्यों ना हो, ख्वाबो शोहर ही क्यों ना हो, ख्वाबो बड़े ही क्यों ना हो, ला ताअत अली मखलूक फी मासियत अल खालिक, खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक के लिए कोई इताअत नहीं। मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनको हम जरूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने सालेहीन के मिलने का जिक्र क्यों किया? कि दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर तुम लोगों से कट गए, बुरी सोहबतें छोड़ी, दोस्तियां छोड़ी, अपनों को छोड़ा, अल्लाह कितना प्यारा खानदान, कितने प्यारे दोस्त तुम्हें देगा, तुम्हें सालिहीन के साथ मिला देगा। देखो अल्लाह की खातिर कट रहे हो तो जुड़ कहाँ रहे हो? ये देख लो ताकि तुम्हें महरूमी का एहसास ना हो। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। यानी जिस तरह अल्लाह के अजाब से डर कर नाफरमानी से बाज आ जाना चाहिए, ये शख्स बंदों की दी हुई तकलीफों से डर कर ईमान और नेकी से बाज आ गया। यूं समझ लीजिए कि लोगों की बातों से बेनियाज हो जाए, दीन पर चलना आसान हो जाएगा। वला इंजा अनसरु मिन रब्बिक, अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तो तुम्हारे साथ थे। और दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम है, और अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और हम तुम्हारी खताओं को अपने ऊपर ले लेंगे, हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं। आप ऐसी गुफ्तगू सुनते होंगे, जज्बाती ना बनो, देखो हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, अभी तो तुम्हारा कैरियर बना नहीं, पागल ना बनो, अभी तुमने देखा ही क्या है, और इसी तरह की बातें। हजरत उमर के बारे में भी आता है, जब वो ईमान लाए तो अबू सुफियान और हर्ब बिन उमैया बिन खल्फ ने भी उनसे मिलकर ऐसी ही बातें की थी कि हम सारा अजाब सवाब अपनी गर्दन पर ले लेंगे, बस तुम हमारे कहने पर इस नए दीन को छोड़ दो। इन्नहुम लकाज़िबून, वो कतन झूठे हैं। हाँ जरूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क़यामत के रोज यकीनन उनसे इन इफ्तरा परदाजियों की बाज़पुरस होगी जो वो करते रहे हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1,000 बरस उनके दरमियान रहे, आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। अल्लाह ताला ने यहाँ मेरे और आपके लिए सबर की, इस्तकामत की, अजीमत की एक बेहतरीन प्रैक्टिकल मिसाल रख दी। 950 साल तक अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे, दिन रात दावत देते रहे, मैं और आप 9.5 मिनट भी बात कह नहीं पाते, और अहले ईमान को भी हौसला दिया जा रहा है कि अभी तो 5-6 बरस गुजरे हैं तुम्हें जुल्मों सितम सहते, लेकिन हमारे बंदे हजरत नूह को देखो कितना तवील अरसा उन्होंने लोगों की बातों को सहा। फिर नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशाने इबरत बनाकर रख दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं, और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तदा करता है फिर उसका इयादा करता है? यकीनन ये इयादा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तदा की है, फिर अल्लाह बारे दीगर भी जिंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए, उसी की तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम न जमीन में आजिज करने वाले हो न आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का और इससे मुलाकात का इनकार किया है वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक सजा है। आयत नंबर 23 है सूरह अनकबूत की। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं। दुनिया में तो अल्लाह की रहमत आम है, और क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी। अल्लाह हमें दुनिया में भी अपनी रहमत से महरूम न करना और क़यामत के दिन भी अपनी रहमतें पाने वालों में शामिल करना। फरमा का ना जवाब कौमी ही, फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कत्ल कर दो इसे या जला डालो इसको, आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। क्या आज भी अल्लाह बचाने पर कादिर है? यकीनन आज भी अल्लाह बचाने पे कुदरत रखता है। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया, मगर क्यामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे। यहाँ अल्लाह ताला ताल्लुकात की बुनियाद बता रहे हैं कि किस बुनियाद पर ताल्लुकात है, मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर। मुझे और आपको सोचना है, हमारे ताल्लुक की बुनियाद क्या है, बिजनेस, सियासत, किस बिना पर हमारी सोचें मिलती हैं, हमारे नजरियात मिलते हैं, किस बिना पर हमारी दोस्तियां हैं। क्योंकि जिसके साथ मोहब्बत करते हैं उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। और यह हर दौर का अलमिया है कि जिस तरह हिंदुओं ने, जिस तरह काफिरों ने बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया, ये बुत पत्थर के और मिट्टी के भी हो सकते हैं और रस्म और रवाज के भी। कल काफिर पत्थर के बुतों पर बाहम इकट्ठे होते थे, आज अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, तोड़कर रस्म और रवाज के बुतों को पूजा जाता है, उन पर इकट्ठ होता है, वो बाहम मोहब्बत का जरिया बनते हैं, मिलजुल कर इन रस्मों को तकवीयत दी जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उन्हें बढ़ाया, फैलाया, सजाया, संवारा जाता है। गिन गिन कर देख लीजिए शादी ब्याह की रस्मों को, इनके बुतों को, एक को भी तोड़ा नहीं जा सकता। और मौत के मौके पे उन रस्मों को देख लीजिए, इनसे इनहराफ मुश्किल और अल्लाह का हुक्म तोड़ना आसान। अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह कर दे, मगर क्यामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने उसको माना और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। वकाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, क्या मैं और आप ये कहने को तैयार हैं, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करती हूँ, मैं बुराइयों को छोड़ के, बुरी आदतों को छोड़ के, बुरी सोहबतों को छोड़ के मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करती हूँ, मैं अपने नफ्स को छोड़ के, शैतान की राहों को छोड़ के मैं अपने रब की तरफ जाती हूँ। इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम, बेशक वो गालिब और हकीम है। और हमने उसे इसहाक अलैहि सलाम और याकूब अलैहि सलाम जैसी औलाद इनायत फरमाई और उनकी नस्ल में नबुवत और किताब रख दी। अल्लाह की खातिर कटे, अल्लाह ने अम्बिया का खानदान दे दिया और उसे दुनिया में उसका अजर अता किया, और आखिरत में वो यकीनन सालहीन में से होगा। और हमने लूत अलैहि सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया, क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और रहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो, यानी ऐलानिया बुराइयां करते हो। इस बुराई की सजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम जिस शख्स को अमले कौमे लूत करते पाओ, इसके फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। ये तिर्मिजी की हदीस है। फमा काना जवाब कौमी ही, फिर कोई जवाब उसकी कौम के पास इसके सिवा ना था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। लूत अलैहि सलाम ने कहा, है मेरे रब, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्तादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, यानी हजरत इसहाक और हजरत याकूब की पैदाइश की बशारत, तो उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों पीछे रह जाने वालों में से थी? कि उसे अपनी बरादरी और रिश्तेदारों की मोहब्बत ले डूबी। प्यारे नबी की इस हदीस को याद कर लीजिए, अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी उस शख्स के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और हमने सिर्फ ये दुआएं ही नहीं करनी कि अल्हिकनी बिस्सालिहीन, हमें सालेहों के साथ मिला, तवफ्फना माल अबरार, हमें नेक लोगों के साथ फौत कर, हमें सिर्फ दुआ ही नहीं करनी बल्कि दवा भी करनी है। फिर जब हमारे फरिश्तादे लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनकी आमद पर वो सख्त परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, ना डरो और ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सवाए तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। यहाँ ये भी रुक कर देख लीजिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता बस इस दुनिया तक है, वहां ईमान की बुनियाद पर रिश्ते जुड़ेंगे या बरकरार रहेंगे। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, उस फिस्क की बदौलत जो ये करते रहे हैं, और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है, इशारा है बहीरा मुर्दार की तरफ, जिसे बहरे लूत भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखर के उम्मीदवार रहो, और जमीन में मुफसद बनकर ज्यादतियां ना करते फिरो। मगर उन्होंने इसे झुटला दिया। आखिरकार एक सख्त जलजले ने उन्हें आ लिया और वो अपने घर में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने हलाक किया। तुम वो मकामात देख चुके हो जहां वो रहते थे। उनके आमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें राह रास से बरगश्ता कर दिया, हालांकि वो होश गोश रखते थे। और कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। मूसा अलैहि सलाम उनके पास बयानात लेकर आए, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जोम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे, यानी भाग कर अल्लाह की गिरफ्त से बच निकलने वाले नहीं थे, अल्लाह की तदबीरों को नाकाम कर देने की ताकत नहीं रखते थे। यहाँ अल्लाह ताला ने कारून और फिरौन और हामान का जिक्र किया। प्यारे नबी फरमाते हैं, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, वो इसके लिए रोशनी, दलील और निजात का सबब नहीं बनेगी, और वो कयामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाह मुझे और आपको माफ करे। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी और हिफाजत करने वाला बना दे, और हमारी नमाजों को कयामत के दिन हमारे लिए रोशनी और दलील और निजात का सबब बना दे। आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा, फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, और किसी को हमने जमीन में धसा दिया यानी कारून, और किसी को गर्क कर दिया यानी फिरौन और हामान। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, मुराद है कौमे आद, जिन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक सख्त हवा का तूफान बरपा रहा, और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया यानी समूद, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम, और किसी को हमने जमीन में धसा दिया यानी कारून, और किसी को गर्क कर दिया यानी फिरौन और हामान। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों से ज्यादा कमजोर मकड़ी का घर ही होता है। अब इस मकड़ी से और इसके घर से कुछ इसकी अच्छी बातें और कुछ इसकी बुरी बातें मैं और आप देख लें कि एक तो ये इससे पता चलता है, क्योंकि मकड़ी ही अपना घर बनाती है, घर औरत से बनता है। और मकड़ी की बुरी बात क्या है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए घर के मर्द को भी खा जाती है, और मकड़ी के जाले में जो फंस जाए उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, स्टिक्की सा जाला होता है। और मकड़ी के जाले की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने बताया कि अगर ये दुनियावी सहारे काबिले एतबार होते तो पिछली कौमें तबाह ना होती। और मकड़ी का जाला तो अपने बनाने वाले को भी नहीं बचा सकता। जाले कहाँ बनते हैं? वीरान जगहों पर जाले बनते हैं। जब दिल वीरान होता है, जब दिल में अल्लाह की याद नहीं होती, तो वहां गैर अल्लाह का जाला बन जाता है, घर बन जाता है। इंसान कमजोर है, उसे सहारा चाहिए। कभी वो अकल, कभी माल, कभी डिग्री, कभी ओहदा, इनके सहारे चाहने लगता है। और इनके सहारे चाहना ऐसे ही है जैसे कोई मकड़ी का जाला पकड़ ले और समझे कि वो बच जाएगा, तो वो बच नहीं सकता। सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है, और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, और दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा 20वां पारा मुकम्मल हुआ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।